ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्टी का प्रथम सत्र शुरू होने जा रहा है। आज के प्रथम सत्र का प्रथम क्लास जो होगा उसका टॉपिक कैचिंग पावर, टचिंग पावर, तो उस पर प्रकाश डालेगी हमारी मीठी प्यारी बहन उर्मिला जी। आप मोस्टली सभी जानते हैं और आपसे सभी परिचित हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञानामृत आता है उसकी आप एडिटर हैं, आप एक महान विदुषी हैं, प्रखर वक्ता हैं, ज्ञान की धनी हैं, ज्ञान रत्नों की, हमेशा उनका मनन चिंतन चलता रहता है कि मैंने उनको बचपन से देखा, उनके बचपन से, कि वो कैसे आर्टिकल्स लिखती थी। तो बहुत ही अपनी हिंदी भाषा की वो विशेषज्ञ है, इस आधार से ज्ञानामृत हमारे पास आता है। उसकी वो बहुत अच्छे से एडिटिंग करना, हमारे तक पहुंचाना, दादियों के संदेश कैसे पहुंचाना और फोटोज के माध्यम से सेवा का प्रसारण कैसे, हर बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए न्यारी प्यारी होकर के रहती है ऐसी प्रिय सखी प्यारी प्यारी उर्मिला बहन, जिससे हम सुनेंगे कैचिंग पावर, टचिंग पावर। आदरणीय उर्मिला बहन जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम युग की अंतिम घड़ियां और नजदीक आती जा रही हैं और ऐसे समय में हम सभी के पास इन दोनों शक्तियों का होना बहुत आवश्यक, कैचिंग पावर और टचिंग पावर। ऐसे तो हमारा प्यारा बाबा सर्वशक्तिवान है, उनके पास अनंत शक्तियां हैं और जब हम उनसे योग लगाते हैं तो वो सारी शक्तियां हमें भी मिल जाती हैं। हमारा जो प्रदर्शनी का चित्र है उसमें तो हमने केवल 8 शक्तियां सैंपल के रूप में दिखाई हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। लेकिन शक्तियां यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत सारी हम लिस्ट निकालेंगे तो हजारों निकलेंगी। अनुशासन भी एक शक्ति है, आत्म नियंत्रण भी एक शक्ति है, आत्म विश्वास भी एक शक्ति है, आभार की भी शक्ति है, ईमानदारी भी एक शक्ति है, करुणा भी एक शक्ति है, एकता भी एक शक्ति है, एकाग्रता भी एक शक्ति है, सहानुभूति भी शक्ति है, संवेदना भी शक्ति है। तो बहुत सारी शक्तियां हैं, उनमें से ये कैचिंग और टचिंग ये भी दो शक्तियां हैं। भगवान से हमें शक्तियां मिलती हैं जब हम योग में बैठते हैं, तो उसका एक साइंटिफिक सिद्धांत है। जिन भाई बहनों ने साइंस पढ़ी है या जो थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में जो हवा है वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाती है और जो गर्म ऊर्जा है वो भी अधिक तापमान से कम तापमान की ओर बहती है, और जो ठोस पदार्थ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होते हैं। तो शिव बाबा को ने सर्वशक्तिवान है, मतलब हमेशा भरपूर है, और जब हम खाली आत्माएं उनके सामने पहुंच जाती हैं तो इस ऑटोमेटिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग उस भरे हुए से हम जो खाली गए उसकी तरफ शक्तियां अपने आप प्रवाहित होनी चालू हो जाती हैं। मांगने की जरूरत नहीं रहती कि आप हमको शक्ति दो, नहीं, आप उनके सामने जाके बैठ गए और ऑटोमेटिक प्रवाहित होनी चालू हो गई। लेकिन भगवान से जो शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं वो हम कैच करते हैं, और कैच करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। जैसे कोई व्यक्ति हमें कोई चीज पकड़ाता है तो इस शरीर में हमारे पास पकड़ने के लिए हाथ है, हम हाथ को ऐसे आगे करते हैं, कोई हमें प्रसाद दे रहा है लेकिन हमारा हाथ हिल रहा है, तो या तो वो व्यक्ति देगा नहीं, देगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो भगवान हमको शक्तियां दे रहा है तो हमारा जो मन है वो कैच करता है, तो वो स्थिर होना चाहिए, एकाग्र है, एक ही संकल्प में है, एक में ही टिका हुआ है, तो वो शक्तियां मन में भरती जाती हैं। लेकिन मन के संकल्प हाफ हजार्ड है, एक बार ऊपर बाबा की तरफ गए फिर दाएं बाएं गए, तो या तो भगवान देगा ही नहीं, देगा तो हम कैच नहीं कर पाएंगे। और मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि नेत्र का काम करती है, तो जब हम तीसरे नेत्र से एक रस उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखते, तीसरा नेत्र उस पर टिका हुआ है, तो शक्तियां मन और बुद्धि की एकाग्रता के माध्यम से हमारे अंदर आती जाती है। अब मन को कैसे एकाग्र करें, ऐसे तो बाबा ने हमें मुरली में बहुत सारी विधियां बताई हैं, लेकिन हम यहां छोटी छोटी पांच विधियों की चर्चा करेंगे, बहुत ही सरल। पहली विधि है कि जब मन कहीं भी जाता है तो उसको साक्षी होकर के देखो। जैसे घर में चूहा घुसता है तो हम साक्षी होकर नहीं देखते हैं कि इसका बिल कहाँ है, ये किधर जाएगा। चींटी की अगर लाइन जा रही हो तो हम साक्षी होकर देखते हैं आखिर भी ये चींटी किधर जा रही है। तो मन को देखो, ये किधर जा रहा है, इसकी रुचि कहाँ है, और फिर इसको पूछो कि तू वहां क्यों गया था। मान लो भोजन की तरफ जा रहा है तो उसको पूछो कि सुबह नाश्ता तो कर लिया, फिर क्यों जा, क्यों गया वहां। मान लो ये सोने की तरफ जा रहा है तो उसको पूछो कि रात भर नींद की, अब वहां क्यों जा रहा है। किसी व्यक्ति की तरफ जा रहा है तो उसको पूछो कि जब सबका रस एक में है तो तू व्यक्तियों की तरफ क्यों भटकता है। जैसे कोई बच्चा बहुत भटकता है तो हम उसको बिठा के पूछते हैं कि तू कहां गया था, तो बच्चे को लगता है कि मेरी इंक्वायरी होती है तो जाना बंद कर देता है। तो मन को भी जो लगता है कि मेरी इंक्वायरी होती है, मेरे से पूछा जाएगा, मेरा सुपरविजन हो रहा है, तो फिर ये जाना बंद कर देता है। दूसरा, बाबा कहते हैं अपने स्वमान में रहो। जब हम स्वमान में रहते हैं तो मन एकाग्र रहता है, क्योंकि स्वमान का थॉट बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जब मन स्वमान से नीचे आ जाता है और निचाई की कोई सीमा नहीं है, जब नीचे आता है तो पता नहीं कहां कहां जाता है, तो अपने उन संकल्पों को एक कागज पे लिखो, मन ने क्या क्या सोचा, और जब वो लिखत हम पढ़ेंगे ना तो हमको आएगा अरे ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये बात क्यों सोची, उसको आप काटा लगा दो। अपने मन की सोच को खुद ही एडिट करो, गैर जरूरी बातों को निकाल दो। ये भी नहीं सोचना था, ये भी नहीं सोचना था, ये भी नहीं सोचना था। तो जब रोज रोज अपने संकल्पों को आप ही एडिट करेंगे ना, तो ये ऊंचाई पे रहना सीख जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तीसरी बात, कई बार मन किसी घटना या किसी व्यक्ति जो बीत गया उसके बारे में नेगेटिव सोचता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसी बात बोल दी जो हमें पसंद नहीं थी, अब हम उसको याद कर रहे हैं, मन बार बार उसकी तरफ जा रहा है। तो इस मन को समझाना है कि उस व्यक्ति में केवल एक ही बात है क्या? वो 50 साल का व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में केवल एक ही बात है कि उसने हमारा अपमान किया या हमें गलत बात बोली? उसकी जिंदगी में अच्छी बातें भी तो हैं, तो चलो उन अच्छी बातों को रिकॉल करते हैं। तो उस व्यक्ति के गुणों के ऊपर नजर दौड़ाएंगे, लिखना चालू करेंगे ना, तो उसका जो अवगुण था वो ऑटोमेटिक पर्दे के पीछे चला जाएगा। और कोई घटना घटी दुखदाई, हम कहीं गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, कोई हमारी चीज चोरी हो गई थी, कुछ भी, तो उसके क्या क्या फायदे निकले, उन फायदों को लिखो। नेगेटिव घटना में भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो बार बार मन उस नेगेटिव घटना में जाना बंद कर देगा। चौथी बात, इस मन को कहो कि तुम साधारण नहीं हो, तुम एक देवता के मन हो, होवनहार देवता के मन हो। और इसको कहो कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, 5000 साल मेरे साथ रहोगे, हर कल्प में मेरे साथ ही हो। देखो ये जो आंख है ना, ये कितनी पुरानी है। अगर ये शरीर 60 साल पुराना है तो ये तो 60 साल पुरानी है ना। आंख कहो, नाक कहो, कान कहो, हाथ कहो, ये कोई अविनाशी मित्र थोड़ी है। और इस जीवन में भी रहते रहते क्या पता आंख बीच में ही साथ छोड़ दे, कान बीच में ही साथ छोड़ दे। मन साथ नहीं छोड़ता है, मतलब मन आत्मा का अविनाशी साथी है। तो इसको कहो तुम मेरी अविनाशी साथी है। तो तुमको मुझे साथ भी बहुत अच्छे से देना है। इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं कब साथ छोड़ दें, पर तुम तो साथी हो ना, तो मेरे पुराने साथी, अच्छे साथी और एक महान आत्मा के साथी। तो तुम्हारे विचार कितने महान होने चाहिए, तुम कोई साधारण थोड़े हो। जिसका मित्र इतना महान, उसके विचार भी तो बहुत महान होने चाहिए ना। तो रोज इस मन को याद कराओ। और पांचवी बात, इसका हालचाल पूछो कि तुम ठीक हो, खुश हो, संतुष्ट हो। कई बार हम भागते रहते और मन असंतुष्टि के संकल्प करता रहता है, तो थोड़े रुको और रुक करके इसका हालचाल पूछो। तुम खुश हो, तुम संतुष्ट हो, तुमको क्या चाहिए? और तुम असंतुष्ट हो तो किस बात में असंतुष्ट हो, बताओ, खुल के बोलो। तो जब आप इसको समय देते हो, इसका हालचाल पूछते हो, तो ये खुश हो जाता है और ये आपके अकॉर्डिंग चलना चालू कर देता है। तो जो मन है उसको एकाग्र करके हमें अपनी कैचिंग और टचिंग पावर को बढ़ाना है। इन दोनों में भी अंतर है, कैचिंग और टचिंग में भी। पहले हम कैचिंग पावर की बात करेंगे और उससे भी पहले हम बाबा ने उसके लिए क्या क्या उदाहरण दिए उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बाबा ने उदाहरण दिया कि लौकिक दुनिया में एक मौसम विभाग होता है, तो मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, पहले से मौसम का आकलन करते हैं और वो प्रेस विज्ञप्ति जारी भी करते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, भाई आज धूप बहुत तेज होगी, सूर्य की सीधी किरणें आएंगी, या आंधी तूफान आने वाला है, या हवा बहुत तेज गति से चलेगी, आंधी आएगी। समुद्र के किनारे वालों को बताते हैं, समुद्र की लहरें बहुत ऊंची होंगी, भूकंप का भी अंदेशा हो जाता है, बता देते तो सावधान हो जाती है पब्लिक। तो हम बात कर रहे थे भौतिक जगत के मौसम के बारे में, उन लोगों को पहले से आकलन हो जाता है। तो बाबा ने कहा आपके जीवन में भी मान लीजिए कोई समस्या आने वाली है, कोई परिस्थिति है, कोई विघ्न है, तो अगर आपका मन एकाग्र है, स्मृति शक्तिशाली है, अचल अडोल स्थिति है, तो आपको भी पहले से उस प्रकार की टचिंग आएगी कि कुछ होने वाला है तो मैं सावधान हो जाऊं और उस समस्या को पार करने के लिए आप में पहले से शक्ति आ जाएगी। भले समस्या आएगी लेकिन आपको उलझाएगी नहीं, आप पार कर जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण बाबा ने युद्ध का दिया, उसकी तो बहुत सारी बातें हमने अभी अभी सुनी। युद्ध के समय गवर्नमेंट क्या करती है कि दुश्मन शत्रु कौन कौन से हथियार यूज करने वाला है और कब कब हमारे पे फेंकने वाला है, इस बात को पहले से कैच करने की कोशिश करती है। उसके ऐसे यंत्र होते हैं जिनसे वो देख लेती है कि सीमा पार से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या गतिविधियां हो रही है। तो बाबा ने कहा अगर वो कैच ना करे तो दुश्मन बहुत नुकसान कर सकता है। तो ऐसी आपके अंदर भी अगर कैचिंग पावर होगी तो आप पहले से समझ जाएंगे कि ये बात किस प्रकार से मुझे नुकसान कर सकती है। अगर मैंने इस तरफ अपना पांव बढ़ाया तो माया किस तरीके से वार कर सकती है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, सीता ने सोने के हिरण को देखा लेकिन वो कैच नहीं कर पाई कि आर्टिफिशियल है, ये माया का रूप है। देखा और उसके ऊपर आकर्षित हो गई और उसके बाद आगे क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। तो हमें पहले से समझ में आ जाएगा कि ये माया छिपे रूप में वार कर रही है और मुझे इसके जाल में नहीं फंसना है। तीसरा बाबा ने उदाहरण दिया, अगर बुखार भी आने वाला हो तो उसके पहले से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, शरीर को थकान होगी, भूख नहीं लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, मन करेगा सोए रहें, उठने का मन नहीं होगा। तो ये सिम्टम्स, तो ऐसी माया के भी कुछ चिन्ह होते हैं, एकाग्रता भंग होने लगेगी, मन चलायमान होने लगेगा, कोई पुरानी बीती बात याद आने लगेगी, मुरली में मन नहीं लगेगा, योग में मन नहीं लगेगा। ये पहले से सिम्टम्स दिख जाते हैं कि अब माया वार करने वाली है, तो उस समय हमें चुकन्ना हो जाना चाहिए, कैच कर लेना चाहिए, अपनी मानसिक स्थिति को पढ़ लेना चाहिए। चौथा उदाहरण बाबा ने ज्योतिषी का दिया। आजकल के जो ज्योतिषी हैं वो ग्रहों की स्थिति देख करके अल्पकाल के लिए किसी का भविष्य बता देते हैं। बाबा ने कहा उनके पास तो अल्पकालीन नॉलेज और आपके पास तो कितना ऊंचा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम का दिया हुआ ज्ञान है, तो आप तो ऐसी ज्ञान की अथॉरिटी, जब वो थोड़े से ज्ञान से अल्पकाल का भविष्य बता सकते हैं तो इतने ऊंचे ज्ञान के बल से क्या आप अपने भविष्य को या आने वाली घटनाओं को कैच नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त वही है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक में अटूट लगन हो और संग तोड़ एक संग जोड़, ये धारणा पक्की। बाबा ने यही मेडिटेशन हॉल में एक मुरली चलाई थी और आते ही बच्चों से पूछा था कि बताओ बाबा क्या देख रहे हैं, तो सारे बच्चे चुप थे। तो बाबा ने कहा वहां सूक्ष्म वतन में तो एक सेकंड में बातें कैच भी हो जाती हैं और उनका मीनिंग भी समझ में आ जाता है, यहां तो बातों को विस्तार से समझाना पड़ता है। अगर आप सूक्ष्म वतन जैसी अव्यक्त स्थिति में बैठो तो आप कैच कर सकते हो कि बाबा क्या देख रही हैं और बाबा क्या सुनाने वाले हैं। तो फरिश्ता स्थिति कहिए, डबल लाइट स्थिति कहिए, व्यक्त से परे अव्यक्त स्थिति कहिए, जब हम उसमें स्थित होते हैं तो कैच कर पाते हैं। और लास्ट उदाहरण बाबा ने दिया, टेलीफोन में जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे की बात को कितना क्लियरली सुनते हैं, ऐसे ही संकल्पों की भी बात होती है, एक ने इधर से संकल्प किया और दूसरे ने उधर से संकल्प को कैच किया। अमेरिका की आर्मी ने एक एक्सपेरिमेंट करने की योजना बनाई थी। योजना ये थी कि आर्मी की दो बटालियन में दो जुड़वा भाइयों को रखा जाए, एक को उसमें और एक को उसमें। अगर युद्ध के समय एक बटालियन का दूसरी बटालियन से संचार ब्रेक हो जाए तो जो जुड़वा हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती बहुत है, तो इधर वाला उधर वाले को संदेश भेज देगा। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। वो कितना सफल रहा वो तो बाद की बात है, लेकिन इतना अवश्य है कि व्यक्ति की भी आपस में फ्रीक्वेंसीज मिलती, जुड़वा लोगों की मिलती हैं, या जो बहुत क्लोज होते हैं जिनका आपस में बहुत प्रेम होता है उनकी भी मिलती हैं। जैसे पुराने जमाने में बच्चे व्यापार के लिए बाहर जाते थे और माँ घर में होती थी तो वो अपने बच्चों को सिखाती थी कि कोई भी मुश्किल आए तो मैं आपको ये एक दिया दे रही हूँ, इसको जला के बैठना, और जब तुम दिया जला के बैठोगे तो मुझे यहाँ पता पड़ेगा कि मेरा बच्चा मुसीबत में है, तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि तब संचार तो था ही नहीं। और महाराणा प्रताप के जीवन में भी दिखाते हैं कि जब वो युद्ध में होता था और हारने वाला होता था तो उसकी माँ को इंट्यूशन होता था कि मेरा बच्चा अब थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, तो वो सब माताएं जो थी महल में, जो महिलाएं होती थी, सबको लेकर के भक्ति में बैठ जाती थी। तो भक्ति मार्ग में भी मन की बात मन तक पहुंचती है, इसके ऊपर लोग बहुत विश्वास करते थे। और अब हम तो ज्ञानी हैं तो ज्ञान में भी हम मन की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मन की बात बाबा तक तो रोज ही पहुंचाते हैं और बाबा की बातों को भी हम रोज ही कैच करते हैं, तभी तो हम ब्राह्मण जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमें अपनी शक्ति को और अधिक आगे बढ़ाना है। कैचिंग पावर के ऊपर हम अमृत वेली कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अब हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमें केवल कैच करना है, बाबा तो दे ही रही, जैसे कोई खेल के मैदान में बॉल को कैच करता है तो उसका सारा ध्यान कहाँ होता है, बॉल के ऊपर होता है ना। अगर थोड़ा भी ध्यान हिल जाए तो कैच नहीं होगी। साइंस में बटन होता है और साइलेंस में संकल्प होता है। संकल्प इज इक्वल टू बटन। साइंस में हमें कोई भी चीज चाहिए तो हम बटन दबाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए तो बटन दबाया प्रकाश हो गया, हमें ठंडक चाहिए बटन दबाया एसी चालू हो गया, हमें पानी चाहिए ठंडा चाहिए तो हम ग्रीन बटन दबाते हैं मशीन से ठंडा पानी आता है, गर्म चाहिए तो रेड बटन दबाते हैं गर्म पानी आता है। तो साइंस में सब कुछ बटन से होता है, साइलेंस में सब कुछ संकल्प से होता है। तो अमृत वेली मुझे बाबा से एक शक्ति चाहिए, उस शक्ति को कैच करना है। कौन सी शक्ति चाहिए? दिनचर्या में मुझे देखना है कि मेरे पास कौन सी शक्ति की कमी है। दिनचर्या में पता पड़ता है, मैं जल्दबाजी बहुत करती हूं, ये किसको पता पड़ेगा, मुझे पता पड़ेगा, मतलब मेरे में धैर्य की कमी है। या मैं किसी की बात सुन ही नहीं सकती, कोई मुझे जरा सा बोल दे ना तो बस खाना पीना सब हराम, मतलब मेरे में सुनने की शक्ति नहीं। या किसी ने मुझे थोड़ा भी करेक्शन दिया मैं सहन नहीं कर सकती, मतलब मेरे में सहन शक्ति की कमी है। ये किसी दूसरे को तो कम पता पड़ेगा, मुझे ज्यादा पता पड़ेगा। या मेरे में आलस्य बहुत है, मैं टालती रहती हूँ बातों को, आज निकल कर लेंगे फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे। तो दिनचर्या में मुझे पहले तो अपनी कमजोरी को कैच करना है, ये भी तो कैचिंग पावर है ना, मेरी कमजोरी को मैं कैच करूं। तो मैंने मान लीजिए दिनचर्या में कैच किया कि मेरे में कमियां तो बहुत है लेकिन धैर्य की तो बहुत ही ज्यादा कमी है, कोई थोड़ा सा टाइम पे नहीं पहुंचा तो मैं तो बहुत उतावली हो जाती हूं, बहुत धैर्य की कमी है मेरे में। तो मुझे क्या करना है, आज मैंने कमी को कैच किया, कल मुझे समाधान को कैच करना है। तो अमृत वेले मैं बाबा के सामने बैठी, मैं आत्मा बैठी, मुझ आत्मा में ही तो धैर्य की कमी है। और मैं बाबा के बिल्कुल सम्मुख गई और वहां मैंने संकल्प किया, जैसे यहां बटन दबाते हैं ना, वहां मैंने संकल्प का बटन दबाया कि प्यारी शिव बाबा से, जो सर्वशक्तियों के भंडार है, धैर्य की शक्ति एक फ्लो के रूप में मुझ आत्मा पर उतर रही है और मैं उस दृश्य को विजुअलाइज कर रही हूं। धैर्य की किरणें, धैर्य की शक्ति, चाहो तो आप उसे येलो कलर में देखो, रेड कलर में देखो, व्हाइट कलर में देखो, आपकी मर्जी है। वो किरणें, मैं जो ज्योति बिंदु आत्मा उनके बिल्कुल नजदीक हूं, मुझ में समा रही है। एक ही संकल्प रखना है, धैर्य की शक्ति, केवल धैर्य, और महसूस करना है कि मुझ में धैर्य की शक्ति भरती जा रही है। मैं धैर्यवान आत्मा हूं, मैं अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझ में बहुत धैर्य है, मैं तो धैर्य की देवी हूं, औरों को भी धैर्य का दान दे सकती हूं, और मेरा बाबा मुझे धैर्य से भरपूर कर रहा है, मुझे धैर्य का वरदान मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रहा है, मैं हूं ही धैर्यवान आत्मा। ये धैर्य मेरा एक बहुत बड़ा शस्त्र है, जिससे मैं अनेक बिगड़े हुए काम बना सकती हूं। आपको योग के पूरे समय केवल एक ही संकल्प में बैठना है, और योग के बाद आप देखेंगे आपको अंदर ही अंदर संकल्प चल रही है कि मैं धैर्य से भरपूर हूं, मेरे में धैर्य आ गया है, और दिन भर की दिनचर्या में आप देखेंगे वो दृश्य जो आपने सुबह देखा ना, वो आपको दिखाई देता रहेगा, धैर्य आ रहा है, धैर्य का वरदान मुझ पर उतर रहा है, बाबा मुझे धैर्य का वरदान दे रहे हैं। दिन में आप एक भी घटना में उतावले नहीं होंगे, एक ही दिन में इतना फर्क पड़ जाएगा, इतनी ताकत है अमृत वेले के एक संकल्प से किए गए योग में। और अगर आप लगातार 21 दिन इसे कर लें तो धैर्य की शक्ति के आप दाता बन जाएंगे, ट्रांसमिट करना चालू कर देंगे, आपके नजदीक कोई आएगा उसमें भी धैर्य आ जाएगा। तो जो भी कमियां मेरे में हैं, सहन शक्ति की कमी है, समाने की शक्ति की कमी है, उसको मुझे कैच करना है। बाबा के पास तो सब कुछ। तो ये हमने एक उदाहरण लिया, इस प्रकार हम हरेक शक्ति पे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको बटन ही तो दबाना है, संकल्प ही तो करना है, बताइए आपको और क्या करना है? बस संकल्प किया और काम चालू हो गए। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, कैचिंग पावर के और टचिंग पावर के। रमेश भाई ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि जब हमारा पहला डेलीगेशन विदेश गया तो उसमें 6 लोग थे, रमेश भाई जी, उषा बहन जी, रोजी बहन जी, शील दादी जी, जगदीश भाई जी, डॉक्टर निर्मला। तो बाबा ने यहां से मुरली चलाई थी, सबको बहुत कुछ सिखा पढ़ा के भेजा था कि वहां सब कुछ रेडी है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको याद में रहना है, घर से बाहर निकलो तो भी याद में, वापस आओ तो भी बाबा की याद में। तो इन्होंने कहीं एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई और उसका उद्घाटन करवाना था, तो ये सब के सब निकले। लेकिन जब ये लिफ्ट में गए तो इनमें से किसी एक ने कहा, अरे बाबा को तो याद किया ही नहीं, बाबा की याद में बैठ के निकलना था ना। तो ये लिफ्ट से वापस मतलब कमरे में, फ्लैट जो भी होगा इनका, वहां आए, बाबा की याद में बैठे, और जैसे ही याद में बैठे तो बाबा ने शील दादी को टच कराया कि आप प्रदर्शनी का उद्घाटन कराने जा रही हो, आपने कैंची तो ली नहीं, फीता कैसे काटोगे? क्योंकि विदेश में ऐसे तो होता नहीं है कि किसी बाजू वाले का दरवाजा खटखटाओ, भाई कैंची दे दो। भारत तो है नहीं वो, यहां तो मिल जाता है सब कुछ। तो इन्होंने कैंची ली और पक्का किया कि बाहर निकलेंगे तो भी बाबा की याद में, वापस लौटेंगे तो भी बाबा की याद में। तो हमारी वो जो एक मिनट की याद होती है ना, उसमें भी बाबा हमें बहुत कुछ टच करवा देते हैं, बहुत जरूरी बात हमें अनुभव करवा देते हैं। हमारे लक्ष्मण भाई जी ने एक बार बताया था, जब बाबा साकार में थे तब की बात है ये भी, एक छोटे से गांव में एक सेंटर था, एक ब्रह्मा कुमारी भोली भाली बहन सेंटर चलाती थी। क्लास में तो वैरायटी आत्माएं आती हैं, और उस जमाने में तो लोगों को बहुत डाउट थे कि ये लोग पवित्रता की बात बताते हैं, पता नहीं सच है कि नहीं है। तो ऐसी एक आत्मा क्लास में आती थी, भाई क्लास में आता तो था लेकिन उसके मन में बड़ी भ्रांतियां थी, और बहन तो भोली भाली थी, पहचानती नहीं थी। तो एक दिन उसने कहा, बहन जी बाजू के गांव में ना आपको प्रवचन के लिए बुलाया है, मैं गाड़ी लेके आऊं, आप चलोगे? तो बहन ने हाँ कर दी, ठीक है मैं चलती हूं, एक बार अंदर जाती हूं। अंदर गई, कुछ लेने गई होगी, तो बाबा ने उसकी बुद्धि खींच ली, बच्ची तू कहां जा रही है, तेरे को पता है ये तेरी परीक्षा लेगा, इसको मना कर दे। तो बाहर आई और उस भाई को उसने मना कर दिया, उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। तो अगर हम बाबा की याद में होंगे, और ऐसा होगा, अभी जो आने वाला समय है ना वो बहुत भयानक है, बहुत भयंकर है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम बाबा की याद में होंगे, बाबा से सच्चे होंगे और बाबा के साथ हमारी ऐसी बिचारी लगन होगी, तो बाबा हमें टच कराएगा कि यहां नहीं जाना। बाबा ने यह भी कहा था कि अगर कहीं असुरक्षा है और आप बाबा की याद में, तो आपका पांव उधर बढ़ेगा जिधर सेफ्टी होगी, और जब आप सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे उसके बाद कोई नुकसान होगा पर आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें भी हमारी क्लीन बुद्धि काम करेगी, क्लियर बुद्धि काम करेगी। ये तो मैंने साकार बाबा के समय की बात बताई, लेकिन वर्तमान समय भी बहुत आत्माएं जो बाबा से टचिंग लेती हैं और अपने काम सफल कर लेती हैं, क्योंकि मैगजीन में तो बहुत लोग अनुभव लिख के भेजते हैं ना। तो हमारी एक दिल्ली की बहन है, उसको सब लोग भगवान की माँ बोलते हैं, क्योंकि चार बेटियां हो गई लगातार, बेटा नहीं हुआ, सब लोग नाराज हो गए, बहुत दुखी थी। तो एक पाठशाला वाली माता घर के आगे से जाती थी, उसने ज्ञान दिया और ज्ञान मिला तो भगवान को उसने बेटा बना लिया, और ऐसा बेटा बनाया कि वो फेमस हो गई भगवान की माँ। बच्चा तो हम सबने भी बनाया, पर उसने तो जैसे एकदम रियल बच्चे की तरह बनाया। वो स्टोरी मैं अभी नहीं सुना रही, अभी मैं दूसरी सुना रही हूं कि उनके परिवार में दो भाई, दोनों का इकट्ठा बिजनेस, और दोनों का आपस में राम और भरत जैसा प्यार, ज्वाइंट फैमिली, बड़ी अमीर फैमिली। तो जो उसके ससुर थे उसने अचानक शरीर छोड़ दिया, और एक कोई प्लॉट खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री का जो कागज था वो ससुर ने रखा, बच्चों को बताया नहीं था। अब जाने के बाद इसको ढूंढने लगे तो वो मिला नहीं, तो बड़ा भाई छोटे को कहता है कागज कहाँ है, छोटा बड़े को कहता है कागज कहाँ है। अब दोनों को कागज का पता नहीं, तो मन में डाउट आ सकता है ना, इसने रखा होगा बताता नहीं। तो ये बहन के मन में आया कि इनका आपस में इतना प्यार है, कहीं एक कागज के टुकड़े के कारण प्यार टूट ना जाए। तो वो कागज कहाँ रखा है, तो इसका युगल ज्ञान में तो नहीं चलता, लेकिन इसको मानता है कि भई ये भगवान से बहुत प्रेम करती है और भगवान इसकी पूरी बात सुनता है। तो उसने कहा अपने बेटे से पूछना, तो इसने भोग बनाया, बाबा के कमरे में बैठी और बाबा को पूरी बात बताई कि कहीं एक कागज के टुकड़े के कारण परिवार का प्रेम ना टूट जाए, तो वो कागज कहाँ है बेटा बता। बात भी ऐसे ही करती है बाबा के साथ, बेटा बेटा कह करके। तो बाबा ने इसको दृश्य दिखाया, संदेशी नहीं है वो, बिल्कुल आम माता है घर में रहने वाली। बाबा ने उसको दृश्य दिखाया कि छत के ऊपर जो कमरा है और उस कमरे में जो गोदरेज की अलमारी है और अलमारी में जो लॉक वाला ड्रॉवर है उसमें वो कागज रखा है। वो कागज लेके आई और दोनों भाइयों को कागज सौंप दिया और इस प्रकार परिवार में शांति हो गई। हमें भी तो ऐसी बहुत बार जरूरत पड़ती है ना, बाबा से पूछे। ऐसे तो बाबा कहते हैं बड़ों से पूछो, निमित्त से पूछो। आपकी टीचर है, आपकी निमित्त बहन है, वो भी आपको बताएगी, लेकिन कई बार वो भी अवेलेबल नहीं होती है, कोई कारण होता है। तो अगर आप में शक्ति है तो आप अमृत वेले बैठो। और अमृत वेले के लिए भी बाबा ने बोला है कि 4 बजे से पहले पहले बैठो, क्योंकि बाद में तो ब्राह्मणों की भीड़ हो जाती है, इतने बच्चे बाबा के पास पहुंच जाते हैं, बाबा को बिजी कर देते हैं। लेकिन कोई 2:30 बजे 2 बजे 3 बजे आता है तो बाबा फ्री होते हैं, मतलब इतनी भीड़ नहीं होती है, कम बच्चे जाते हैं ना 2:30 बजे, तो उस समय बैठो और निर्संकल्प होके बैठो। अपने मन को बिल्कुल कागज को कोरा करके रखो, तब बाबा टचिंग देगा। अगर पहले से आपके मन पे कुछ लिखा है तो आप उसी को पढ़ते रहोगे, होना तो ये चाहिए था, ठीक तो यही वाली बात है, ऐसे होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये कुछ लाइनें आपने कागज पे लिख रखी और उनको लेके बाबा के सामने बैठ गए तो बाबा बोलेगा पहले से लिखा है उस पे मैं क्यों लिखूं। तो हमारा मन दोहराता रहेगा, हाँ यही होना चाहिए, हम बाबा के सामने बैठे थे, बाबा ने बोला यही होना चाहिए, यही ठीक है। ऐसा संकल्प लेके हम उठेंगे, फिर हम उस काम को करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी, फिर हम कहेंगे बाबा ने टचिंग तो यही दी थी, फिर भी पता नहीं सफलता क्यों नहीं मिली, अरे कोरा कागज कहाँ था, आपके मन का भाव रिपीट हो रहा था। और मेरे मन मत पे, मुझे मन मत जैसा ही रिजल्ट मिलेगा, ईश्वरीय मत जैसा रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल क्लीन मन से, बाबा मैं छोटा सा बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं आता और ना मेरा अपना कोई विचार है, विचार मैं तब दूना जब मेरे पास कोई बुद्धि हो, बुद्धिमानों की बुद्धि तो आप ही, तो बुद्धि तो आप ही दोगे और जो आप दोगे मुझे वही करना है, नहीं दोगे तो ये लटका रहे मुझे करना भी नहीं, मतलब पूरी तरह सरेंडर बुद्धि, तब बाबा टच करवाता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न और है कि मुझे जो टचिंग आई वो बाबा की ही टचिंग है, कैसे माना जाए। इसकी 3 निशानियां हैं। अगर वो टचिंग बाबा की टचिंग है तो टचिंग होते ही मेरा मन कहेगा कि ये बात तो मेरी मन चित्त में आज तक कभी आई नहीं, ये बात मेरी शक्ति से परे की बात। अच्छा ऐसा भी कोई विचार हो सकता है, ये तो आज पहली बार मन में आई, मैं इतने साल की हो गई, इतने लोगों के मैंने अनुभव सुने, ये बात तो कभी सुनी ही नहीं, तो ये बात मेरी शक्ति से परे की है, बहुत शक्तिशाली है, एकदम नई है, मन में ये विचार आएगा। नंबर 2, जैसे ही हम उस विचार को किसी को सुनाएंगे सामने वाला तुरंत सहमत हो जाएगा, न तो दूसरा आइडिया देगा ना क्यों क्या का क्वेश्चन करेगा, उसको भी एकदम फिट बैठेगी वो बात, उसको भी लगेगा हाँ आइडिया बड़ा अच्छा है, और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो लोगों का सहयोग आपको बिना मांगे भी मिलेगा, इजीली मिलेगा, एकमत हो जाएंगे, एकता हो जाएगी, बिना मेहनत के काम सफल हो जाएगा। और तीसरी बात, उस कार्य का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। जो आपके सहयोगी बने थे वो भी ये कहेंगे कि हमने आपको सहयोग नहीं दिया, बल्कि इस कार्य को करते करते हमारे मन से तो बहुत दुआएं निकली। और लंबे काल तक लोग उसको याद रखेंगे कि अच्छा, ये वाली सेवा आपने करवाई थी, बड़ा ही मजा आया था। तो खुद भी हम खुश होंगे, औरों को भी खुशी मिलेगी। जैसे हमारी बड़ी दादी, 2007 में दादी जी गए, उससे पहले मुझे याद है जब वो शांतिवन की क्लास में आया करते थे तो रोज कोई ना कोई बात सुनाया करते थे। आज बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने ये टच किया, आज बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने ये टच किया, ऐसे सुनाती थी। तो 2004 में पहली बार दादी ने सुनाया था कि मुझे बाबा ने टच किया, 1,00,000 का प्रोग्राम होना चाहिए। 1,00,000 भाई बहन आई, सबने बहुत तालियां बजाई थी। और सबसे पहले इस प्रोग्राम को हिम्मत करके गुजरात ने कहा था कि हम करके दिखाएंगे। और वो चूंकि पहला प्रोग्राम था तो मधुबन से भी बहुत बसें भर भर के गई थी, बीके नॉन बीके दोनों ही प्रोग्राम में होते थे। लेकिन 1,00,000 की आत्माओं को इकट्ठा करना कोई मासी का घर तो नहीं होता है, जबकि तब तक हमारी सभाओं में 5,000 भी लोग आ जाते थे तो हम कहते थे बहुत आए बहुत आए। तो बीके और नॉन बीके सचमुच 1,00,000 की सभा हुई थी, बहुत बड़े पंडाल में। और देखो वो एक के बाद एक प्रोग्राम हुए, फिर सब जगह हुए, राजधानियों में तो हुए ही हुए, बड़े सिटीज में भी हुए। और वो हमें अब तक भी याद है, किस प्रोग्राम में कौन आया, क्या हुआ, क्या उसका रिजल्ट निकला। तो ये टचिंग का प्रोग्राम था। ऐसा नहीं है कि हमारी दादियों को ही टचिंग होती है, जो हमारी बहनी है निमित्त, हमारे भाई हैं, क्लास में आने वाले भाई बहन, इवन की गीता पाठशाला वालों को भी टचिंग हो जाती है, किसी को भी हो सकती। बाबा ने इसमें कोई कैटेगरी नहीं बना रखी, किसी को होगी उसको नहीं होगी, पुरानों को होगी नयों को नहीं होगी, एक दो दिन वालों को भी टचिंग हो जाती। बस शर्त यही है कि लाइन हमारी बिल्कुल बाबा के प्यार में हो, बीच में कट ऑफ ना हो, बीच में कोई दूसरा ना हो। जैसे टेलीफोन का मैसेज कब जाता है, लाइन अंगेज ना हो, नहीं तो कहता है ना कि अभी लाइन बिजी है, थोड़ी देर बाद फोन करना। तो अगर किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में हम अंगेज होंगे तो बाबा तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, बाबा की बात हमारे तक नहीं पहुंचेगी, कार्य नहीं होगा। एक और हमारी माता जी, जिसने बाबा को बेटा बना रखा है, अभी भी है, वो आती रहती है, मिलती रहती है, गुजरात की है। तो उसने अपना अनुभव सुनाया था कि मेरा जो युगल है वो LIC का रीजनल कमिश्नर, ऐसी कुछ होती है इनकी पोस्ट, कई डिस्ट्रिक्ट का काम उसको देखना होता है। तो वो पैसों का बैग भर के घर में लेके आता था और मैंने उसे बाबा का ही बैग दे रखा था, तो बाबा इन पैसों की रक्षा करेगा। खुद तो अनपढ़, लेकिन ज्ञान में चल गई तो सब कुछ सीख गई। तो एक बार क्या हुआ कि उसके युगल को विदेश जाना था और वो बंबई में एक होटल में ठहरा था, सुबह की फ्लाइट थी, यही कोई 9-8 बजे की फ्लाइट होगी। तो सुबह जल्दी तैयार हुआ और होटल से जब निकलने लगा तो टिकट ढूंढने लगा, टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है, टिकट नहीं मिली, सब कुछ ढूंढ लिया। और फिर परेशान होके बहन को फोन किया कि अपने, वो कहती थी मेरा शिव बाबा मेरा पिल्लू बच्चा है, मतलब पल्ला पकड़ के मेरे साथ घूमता रहता है। तो पल्ला पकड़ने वाला बेटा मतलब पिल्लू बेटा। तो उसने कहा तू अपने पिल्लू बेटे से पूछ मैंने टिकट कहाँ रख दी, क्योंकि अगर टिकट नहीं होगी तो मेरा तो पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो ये गई बाबा के पास और बिल्कुल ऐसे ही बात करती है, बेटा तेरे पापा टिकट रख के भूल गए। देखो कितना अच्छा संबंध। तो टिकट कहाँ रखी, कितना नजदीक संबंध होगा। विचार करो आप, इमर्ज करो, भगवान बेटा है वो माँ है और कैसे वो बात करती है। तो मैं रोमांच खड़े होते हैं ना ऐसा अनुभव करके कि कैसे भगवान जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो बच्चे के रूप में सामने आ गया। तो उसने बाबा ने दृश्य दिखा दिया कि रात को मच्छरदानी लगा के जो वो आत्मा सोई, तो मच्छरदानी चारों तरफ से तो जाली वाली होती है ना, लेकिन जो मच्छरदानी की छत होती है उसका कपड़ा थिक होता है, दिखता नहीं है उसमें से कुछ भी। तो जब रात को सोया तो छत के ऊपर ऐसे टिकट रख दी और फिर मच्छरदानी में घुस गए। अब वो छत पे क्या रखा है दिखता नहीं है ना, थिक होता है कपड़ा। तो बता दिया कि मच्छरदानी की छत पे, तो वहां से टिकट उठाई और इस बहन को कितना धन्यवाद दिया होगा कि सचमुच वो ज्ञान में नहीं चलता, पर इस बहन को कहता है मैं अचार रोटी खा लूंगा पर तू बाबा की सेवा जरूर कर। तो हम सबको भी अवश्य ऐसे अनुभव हुए हैं, आप सबको अपने अपने अनुभव याद आ रही हैं मुझे लग रहा है, और आप सब अगर सुनाना चालू कर दें तो कितने दिन गुजर जाएं। हम सबको बाबा के साथ के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, किसी का बहुत अच्छा अनुभव हो तो आप हमें लिख के भी भेज सकते। थोड़े दिन पहले एक बहन ने अनुभव लिख के भेजा था, बाबा के साथ शादी रचाई, बाबा की अनोखी दुल्हन, जुलाई 2024, जुलाई या अगस्त 2024 की ज्ञान अमृत का अनुभव। पति को उस दिन शरीर छोड़ना था, सेंटर से निकलती है, बाबा की मुरली रिपीट करती करती घर जाती है और रास्ते में बाबा पूछते हैं कि बच्ची आज मैं राजीव को ले जाऊं, बाबा या कोई दिखता नहीं है तो तू रोएगी तो नहीं। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सवाल है, आयु भी छोटी है बच्चे भी छोटे, ये ध्यान नहीं देती है। फिर आवाज आती है आज राजीव को ले जाऊं तुम रोओगी तो नहीं। सोचती है अगर बाबा कह रहा है ना करूंगी तो भी बाबा को तो ले ही जाना है, तो कह देती है ठीक है बाबा, और घर में आके काम में लग जाती है। काम करके 12 बजे योग में बैठती है तो इसे एक दृश्य दिखता है कि मैं दुल्हन की तरह सजी हुई हूं और बाबा भी अव्यक्त रूप में मेरे साथ फेरे फिर रही है। बाबा ने मेरी मांग भरी है, तिलक लगाया है और बाबा कहते हैं अब तुम मेरी दुल्हन हो गई हो, तुमको रोना नहीं है। ये फिर कुछ नहीं समझ पाती है और शाम को 7 बजे फिर पूछती है बाबा कब लेके जाओगी, तो कहता है शाम को 7 बजे। दोनों वर्किंग है, वो भाई कहता है कि कल अपने को दोनों को जाना है तो चलो कपड़े प्रेस कर लेते हैं, मुझे चाय बना के दो। 7 बजने में 5 मिनट पहले ये चाय बना के उसके पास रखती है और फिर कहती है चाय पी लो ठंडी हो जाएगी। अब वो चाय उठाता ही नहीं है और ठीक 7 बजे वो देखती है कि वो सोफे पे ऐसे लुढ़क गया है। लेकिन चूंकि दिन भर में इसका मन रेडी हो गया था तो इसको कोई अफसोस ज्यादा नहीं हुआ, इसने सबको फोन करके बुलाया और सब क्रिया हुई। और इसके दोनों बच्चे छोटे थे, बच्चों को इसने पूरी बात बताई तो बच्चे अब बाबा को पापा बोलते हैं और दोनों बच्चे बहुत कामयाब हुए, एक विदेश में है एक यहीं की मिनिस्ट्री में, दोनों की गवर्नमेंट जॉब है। कहती है बच्चे एक एक बात बाबा को बताते हैं, पापा आज ये वाली पढ़ाई पढ़ी क्योंकि तब तो छोटे थे ना, आज स्कूल में पापा ये हुआ, आज स्कूल में पापा ये हुआ, जैसे कोई अपने पापा को समाचार सुनाता है ऐसे बाबा को समाचार सुनाते हैं। और मैं भी, कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे और मैं बाबा को अपना साजन मानती हूँ, तो कोई भक्ति का फल रहा होगा जो बाबा ने ऐसी टचिंग कराई, कोई बहुत बड़ा। बाबा भी तो बच्चों को सारे फल देता है ना, किसी ने बहुत भक्ति की है वो संगम में सबके हिसाब किताब चुपतू कर देता है, तो अवश्य ही उस आत्मा का कोई विशेष रोल रहा होगा। ऐसी टचिंग हमें आई, बाबा ने कहा इसके लिए दो बातें अनिवार्य हैं, नंबर एक एकनामी और नंबर दो इकोनॉमी। एकनामी, केवल एक की याद, एवे बिचारी याद, सबको तज एक को भज, ये पाठ पक्का रहे। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सबको। एक बीज में पानी डालो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, सहारे दाता केवल एक। तो बाबा को भी एक शब्द बहुत प्रिय है, एकता, एकांतवासी, एक मत, एकाग्र, ये सब बहुत प्रिय है बाबा को। तो पहली बात है एक नामी, एक का नाम, और दूसरी इकोनॉमी, केवल धन की इकोनॉमी नहीं, समय, श्वास, संकल्प, सबकी इकोनॉमी। दृढ़ संकल्प करना है कि हम एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भक्ति में कहते हैं श्वास श्वास सिमरण करो, श्वास व्यर्थ न जाए, और न जाने किस श्वास में अंत घड़ी आ जाए। हर संकल्प बाबा को समर्पित, हर संकल्प में बाबा मैं तुझ पर कुर्बान, बाबा मैं तुझ पर वारी जाऊं, बाबा मैं तेरी हूं, बाबा मुझे तेरे सिवाय कोई नहीं चाहिए, बाबा आप ही मेरा संसार, मैं तृप्त हूं, प्राप्ति स्वरूप हूं, भरपूर हूं, संतुष्ट हूं, बस आप मेरे सामने हो, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक एक संकल्प बाबा को अर्पित, और प्रकृति का भी कुछ व्यर्थ ना गवाएं। जरूरत नहीं है तो एक पत्ता भी ना तोड़े, जरूरत नहीं है तो पानी की एक बूंद भी ना गिराए, जरूरत नहीं है तो चावल का एक दाना भी व्यर्थ ना जाने, प्रकृति का भी संरक्षण करें, इससे हमें ताकत मिलती। तो अगर हमारी ये दो धारणाएं मजबूत है, एक नामी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आए, हम अपने व्रत से नहीं टल सकते। जैसे पुराने जमाने में पतिव्रता महिलाएं कैसी होती थी, मर जाएंगी मिट जाएंगी लेकिन अपनी पतिव्रता व्रत को नहीं छोड़ेंगी। तो हम तो एक व्रता भी हैं, पतिव्रता भी हैं, पितावर्ता भी हैं, हमारे तो कई व्रत, हर संबंध का व्रत। तो हम ऐसे एक के सिवाय कोई हमारी आंखों के सामने आ नहीं सकता, नहीं तो ये महापाप है। प्यार एक के साथ करो, याद औरों को करो। मोबाइल को देखते हैं उसमें भी कितने लोगों की शक्लें होती, ऐसे नहीं केवल देह के सब संबंधों को भूल, देह के संबंध भूलने हैं, मोबाइल वाले कोई देह के संबंधी थोड़े। कोई भी देहधारी, थोड़े दिन पहले एक साकार मुरली आई थी कि जो बीत गए मतलब जो चले गए वो भी, और जो वर्तमान में है वो भी, किसी को भी याद नहीं करना। तो मैं इस पे मनन कर रही थी, जो चले गए मतलब इतिहास में, अब कोई कहता अशोक था, कोई महावीर स्वामी था, कोई बुद्ध था, चले गए कोई बात नहीं, पर थे तो देहधारी ना, उनको क्यों याद करना। और जो वर्तमान में 850 करोड़ बेशक देह के संबंधी नहीं है, मोबाइल में तो पता नहीं कितने करोड़ भरे, तो उनको भी नहीं देखना, केवल एक को देखना, ये है एक नामी और इसी तरह इकोनो। तो ये दो धारणाएं पक्की करेंगे ना तो हमारे पास कौन सी दो शक्तियां आ जाएंगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला बहन जी, आपने बहुत अच्छे से कैचिंग पावर टचिंग पावर बताया और सभी को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि जैसे माताओं का एग्जाम्पल दिया, छोटा पिल्लू बना के उसको पूछा, ये तो हर एक भाई बहने रोज अनुभव करते हैं, खास करके भाई लोग ऑफिस जा रहे होंगे, चाबी चाहिए होगा, शूज या सॉक्स इधर उधर कर दिया, इस तरह से माताएं घर में कोई चीज बात करते करते कहीं रख करके ढूंढने लगती हैं, तब बाबा को याद कर लेती हैं। तो ये तो हम कॉमन वे में यूज करते हैं, लेकिन आज उर्मिला बहन जी ने हमें कितना गहराई से, क्योंकि हमें उन बातों में नहीं जाना, हमारी स्थिति को ऐसी बनाना है, कैचिंग पावर टचिंग पावर, क्योंकि आगे चल के अंतिम समय में ये कुछ भी काम नहीं आने वाले, हमारे मोबाइल हमारे जेब में ही रहेंगे परंतु वो केवल एक डिब्बा बन जाएंगे, लेकिन उस समय केवल हमारी स्थिति। बाबा ने कहा अंतिम समय में आपको टचिंग होगा कि इधर पहुंच जाओ, यहाँ आओ, तो उस अनुसार जिसकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी तो होगा। उसके लिए बहुत अच्छे से बताया, एक नामी इकोनॉमी, एक बाबा, भक्ति में भी कहते थे मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वो हमें मिला है तो हमारी मन बुद्धि में उसके अलावा दूसरा कोई प्रभावित न करे, सब नजर आ रहे हैं देखते हुए उनका प्रभाव अपने मन चित पे न हो, इतना हमारे मन बुद्धि को हम क्लीन एंड क्लियर, केवल उसमें बाबा ही हो ऐसे कर लें। तो क्योंकि ये भट्टी का नाम ही क्या है, अंतिम पुरुषार्थ, बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ हमें बहुत आवश्यक करना, हमारा आज भट्टी का फर्स्ट डे और अंतिम पुरुषार्थ के तरीके हम लोगों ने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बारीकी से बताया और बहुत इजी वे में, बहुत ही रमणीकता से। ओम शांति।
ये शोहरत भी क्या।